tidur. Jai Radha Madhava Kunj Bihari, Jai Radha Madhava. Janavallabha Girivarjadhari Jaya Gopi Jaya Gopi Janavallabha Girivarjadhari Jaya Gopi Jaya Yashoda Nandana Braj Jan Ranjan Yashoda Yashoda Nandana Braj Jan Ranjan Yashoda Yamuna tira vanachari Yamuna tira Hari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Janavallabha Girivarjadhari Jaya Gopi Hari Jaya Gopi Janavallabha Girivarjadhari Jaya Gopi Boliye Hari Bhag Girivarj Jaya Yashoda Nandan Vraj Jan Ranjan Yashoda Jan Yashoda Nandan Vraj Jan Ranjan Yashoda Nandan Yamuna Tira Vanakari Yamuna Tira Yamuna tira vanakari Yamuna tira Hari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Radha Hari Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Jaya Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय त्रिभुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की स्वयं से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये नष्टपायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ठ किम् श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय दसवां श्लोक क्रमांक 2 और 3 श्री शुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो दनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्पटो रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो दनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधुर्णीतलोचनो त्रिजनेरनुगायद्भिः शेरतुः पुष्पिते वने वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधुर्णीतलोचनो त्रिजनेरनुगायद्भिः चेरतुः पुष्पिते वने श्रीशुक उवाच तस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो घनदात्मजो कैलाशोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधुर्णीतलोचनो श्रीजनेरनुगायद्भिः श्रीशुकवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो घनदात्मजो कैलासोपवने श्रीजनेरनुगायद्धि श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो घनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधुर्णीतलोचनो श्रीजनेरनुगायद्भिः मदजी श्रीशुक उवाच
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो घनदात्मजो
मन्दाकिन्यां मदोत्कटो शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया रुद्रस्य शिव जी के अनुचरो गो भक्त या पार्षद भूत्वा बनकर सुदृप्तो अपने पद तथा अपने सुंदर रूप रंग से गर्वित होकर धनद आत्मजो देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र कैलाश कैलाश उपवने भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत से लगे एक छोटे बाग में रम्य सुंदर स्थान में मंदाकिन्याम मंदाकिनी नदी के तट पर मद उत्कटो अत्यधिक गर्वित तथा उन्मत्त वारुणीं वारुणी को मदिराम नशीले द्रव्य को पीत्वा पी पीकर मद आधुर्णित लोचनो नशे से आंखें घुमाते हुए जने स्त्रियों के साथ अनुगायत भी उनके द्वारा गाए गए गीतों से गुंजरित चेरतु घूम रहे थे पुष्पिते वने सुंदर फूल के बाग में। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घुमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान शिव के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कतिपय भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती है। इसलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इसका संकेत करते हुए इसकी आलोचना करते हैं। कामिस्तेति यत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो श्री कृष्ण भक्त नहीं है उन्हें स्त्रियों मदिरा आदि का व्यसन लग जाता है, इसलिए उन्हें यत ज्ञान कहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि भगवद गीता में उसका संकेत किया गया है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि न माम दुष्कृतिनो मुद्धा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्यत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। ऐसे दुष्ट जो निकट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान मोह द्वारा अपहत हो चुका है और जो आसुरी नास्तिक प्रकृति वाले हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाता, उसे नराधम अर्थात मनुष्य में सबसे नीच तथा दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लग जाता है कि वह कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं। आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णवों से अधिक क्यों है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि वैष्णव जन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी अधम मनोरंजनों में रुचि लेते हैं और न ही कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण। तो यहां पर बहुत सुंदर एक प्रसंग पूर्ण हो रहा है। नवम स्कंद नवम अध्याय जिसमें भगवान की बहुत सुंदर बाल लीलाओं में जिसको प्रमुख माना गया है ऐसी दामोदर लीला यहाँ पर आप सभी भक्त कई दिनों से सुन रहे थे और इस लीला के द्वारा भगवान क्या साबित करना चाहते हैं। जो दामोदर लीला माता यशोदा ने उसको बांध दिया तो इसके द्वारा भगवान क्या साबित करना चाहते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते कि एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणाम द्वितीय वश्यताम। इस लीला को कहने का और प्रकट करने का एक ही प्रयोजन है कि संदर्शिता ह्यंग हे अंग परीक्षित महाराज को संबोधन करते हुए कहते हैं कि इस लीला के द्वारा भगवान श्री हरि ने बताया द्वितीय वश्यताम वह कितने अपने भक्तों के वश में है। देखिए जिस भगवान को स्तनपान कराते समय पूतना महाभयंकर राक्षसी बाल कृष्ण को अपने स्तन से अलग कराने का प्रयास कर रही थी जिसमें अनेक अनेक हाथियों की शक्ति थी ऐसी पूतना भगवान जब उसका स्तनपान कर रहे थे तो उसके अंग टूटने लगे। कृष्ण को अपनी छाती से अलग करने के लिए बहुत जोर का प्रयास करने लगे। यहाँ तक कहते कि मुंच मुंचाल इति हाथ पैर पछाड़ने लगी लेकिन फिर भी छोटे से कृष्ण को अपनी छाती से अलग नहीं कर पाई। पर वही कृष्ण को स्तनपान करते हुए माता यशोदा ने जब देखा कि चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफान पे आ रहा है तो एक झटके से अपने छाती से अलग करके नीचे छोड़ दिया। यद्यपि कृष्ण की इच्छा नहीं थी वो तृप्त नहीं हुए थे लेकिन फिर भी आसानी से माता यशोदा उसको नीचे रखकर चली गई। पूतना जिसको छुड़ा नहीं सकी लेकिन माता यशोदा ने छुड़ा दिया। जिस भगवान को आज तक कोई डरा नहीं पाया जब महाकाल और साक्षात यम मृत्युदेव भी जिससे थर थर कांपते हैं श्री राधा गिरधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की तो जिससे साक्षात यम और महाकाल भी थर थर कांपते लेकिन वही भगवान कृष्ण माता यशोदा के हाथ में एक छड़ी देखकर भय के मारे थर थर कांपने लगते हैं। और इसी लीला में जिस भगवान को आज तक कोई बांध नहीं पाया बड़े बड़े राजा भी जिसको बांधने का प्रयास करने पर भी नहीं बांध पाए। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर गए और वहां पे दुर्योधन कर्ण दुशासन और उनके अहि सहयोगी राजा सब आपस में मंत्रणा करने लगे कि अगर इस कृष्ण को बांध दिया तो पांडवों का युद्ध करने का सारा उत्साह ही समाप्त हो जाएगा। पांडव युद्ध करने का साहस कर रहे मात्र कृष्ण की वजह से, तो इसको बंदी बना लेंगे तो उसका उत्साह ही ढीला हो जाएगा। तो उन लोगों ने प्रयास किया लेकिन क्या बांध पाए? नहीं। लेकिन वही श्री कृष्ण को एक स्त्री ने, माता यशोदा ने बांध दिया। तो सुखदेव जी कहते कि इस लीला के द्वारा बस एकमात्र यही भगवान साबित करना चाहते हैं कि एवं संदर्शिता यंग हरिनाम धृत्य वश्यता, भगवान श्री हरि कितने अपने भक्तों के वश में है। और इसलिए भागवत में बारंबार शब्द आया है कि भजंतम भजमानस, भगवान अपने भजन करने वाले का भजन करते अपने भजन करने वालों के वश में हो जाते हैं। जब भगवान ने वराह रूप लेकर हिण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हो गया कि उसने असुरों की सभा बुलाई और उसमें सब बड़े बड़े असुर आए। तब हिरण्यकश्यपु कहता है कि हे असुरों, हे दानव, मेरे भाई को वनवासी का रूप लेकर विष्णु ने ही मारा है। क्रोध रूपेण अर्थात वराह का रूप लेकर वह मायावी विष्णु ही था। ये विष्णु पहले तो सम था, उसकी दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं था, वो सबके लिए सम था। लेकिन अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बालस्य एव अस्थिर आत्मनः, उसकी बुद्धि बालकों जैसी हो गई। जैसे कोई बालक, उसको मालूम नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है। उसको तो कोई खाना कुछ दे देंगे, कोई चॉकलेट देंगे, कोई बिस्किट देंगे तो उसके पास चला जाएगा। बालक को अपना हित अहित का कुछ ख्याल नहीं है, उसको तो बस खाना चाहिए, कोई कुछ अच्छी चीज दे देंगे तो उसके पास चला जाएगा। तो यह विष्णु भी बालक हो गया, बालक जैसा हो गया है कि जो उसकी पूजा करते हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, बस उसके पक्ष में हो जाता है। बालस्य अस्थिर आत्मनः भजन्तम भजमानस्य, जो उसका भजन करता है उसका भजन करने लगता है। इसलिए अब यह जीने लायक नहीं है। असुर होने पर भी उसको मालूम है कि भगवान का स्वभाव क्या है। भले ही आसुरी बुद्धि के कारण थोड़ा विपरीत सोच रहा है कि अब उसका स्वभाव ऐसा हो गया, वो मूर्ख नहीं जानता कि पहले से ऐसा ही है। बालस्य भजंतम भजमानस्य, भगवान का स्वभाव है जो उसका भजन करते उसके वश में हो जाते हैं। और भी दशम स्कंद में मथुरा लीला में जहाँ पे भगवान राजमार्ग पर, मथुरा के राजमार्ग पर चलते हुए जा रहे हैं, सबसे पहले वो कंस का धोबी जिसका एक ही झापट में राम नाम सत्य कर दिया, और फिर वहाँ से आगे गए तो सुदामा नाम का, उससे पहले वायक गुणक नाम का दर्जी जिसने कृष्ण और सभी बाल सखाओं ने वस्त्र तो पहन लिए थे लेकिन कंस और उसके मंत्री के बड़े बड़े वस्त्र और ये सब छोटे छोटे बालक तो कुछ फिटिंग नहीं हो रहा था। तब वह दर्जी ने सुंदर सुंदर वस्त्र बना दिए और फिर वहाँ से आगे गए तो सुदामा मालिक के घर पर, राज पर पथ से थोड़ा हटके भगवान सीधे ही उसके घर में चले गए। और वहाँ पे उस सुदामा सबसे पहले भगवान की सेवा, चरण धोवन पुष्प इत्यादि अर्पण करके धूप दीप से उपहारों से भगवान की पूजन सेवा की और बाद में वाणी से भगवान का स्वागत करता है। कहते कि हे प्रभु, आज मेरा घर पवित्र हो गया, आज मेरे पितृओं का उद्धार हो गया, आज मुझ पर देवता संतुष्ट हो गए, ऋषि मुनि संतुष्ट हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया कारण के आपका आगमन मेरे घर में हुआ है। और कहता है कि हे प्रभु, आपकी दृष्टि में कभी भेद नहीं है, सुह्यदो जगत आत्मन, आप पूरे संसार के सुह्यद, पूरा जगत आपके ही आत्मस्वरूप है। और समयो सर्वभूतेषु, आप सभी जीवों के प्रति सम है, न आपके लिए कोई द्वेषी है, न आपका कोई प्रिय है, न आपसे आपको किसी से कुछ विरोध है, न आपसे किसी का अपनापन है, समयो सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति सम है, परंतु भजतो भजंतम भजतो रपि, लेकिन एक गुण बता रहे कि आप फिर भी भले ही सम है फिर भी भजंतम भजतो रपि, जो आपका भजन करते उसका पक्ष ले लेते हैं। सम है आपकी दृष्टि में, भेद नहीं, लेकिन भगवान का गुण बता रहा है कि भजंतम भजतो रपि, आपका थोड़ा सा भजन करने वाले का पक्ष ले लेते हैं, आप उसके वश में हो जाते हैं। और भी आगे दशम स्कंद में सुखदेव जी जहाँ पे भगवान कृष्ण मिथिलापुर में गए और वहाँ पे एक साथ में श्रुतदेव ब्राह्मण और वहाँ का राजा बहुलाश्व, दोनों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे नगर में आए तो पहले मेरे घर पे आए। तो भगवान अपने दोनों भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दो रूप बनाकर और उसके साथ में जो ऋषि थे वह सब भी अपने योग बल से दो रूप बनाकर दोनों के घर में एक साथ एक ही समय पे गए। तब भगवान की उस भक्त वत्सलता को देखकर उस प्रसंग को पूर्ण करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान भक्त भक्तिमान, ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान की भक्ति करते हैं, नहीं, भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों के भक्त है। तो इस लीला से, दामोदर लीला से यही बताया गया है कि भगवान कितने अपने भक्तों के वश में है। अपने भक्तों की कैसी भी इच्छा हो, मुश्किल से मुश्किल इच्छा को भी भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। जैसे महाप्रभु जब शांतिपुर से लौटे तो हरि नदी नामक गांव में आए और वहां से नौका में बैठकर नित्यानंद प्रभु को भी उसमें बिठाया और अपने हाथ से नाव चलाने लगे। नाव का जो चलाने का दंड जिसको चप्पू कहते हैं, उस चप्पू से अपने हाथ से नाव चलाते हुए गंगा जी के उस पार अंबिका कालना में गए और वहाँ पे एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और किसी को भेजा के जाओ गौरीदास पंडित को बुलाकर लाओ। और जैसे ही गौरीदास पंडित आए तो महाप्रभु को अचानक देखकर एकदम भाव विभोर हो गए, आनंद में नाचने लगे। और तब चैतन्य महाप्रभु उसको कहते हैं कि गौरीदास, तुम्हारे लिए मैं अपने हाथ से नौका चलाकर यहाँ गंगा जी को पार करके यहाँ पे तुम्हारे पास आया हूँ। इसी चप्पू से मैंने अपने हाथों से नौका चलाकर गंगा जी को पार किया है, अब लो यह चप्पू तुम रखो और इससे संसार के जीवों को भवसागर से पार होता है। वहां पे महाप्रभु ने एक अपने पास छोटी सी गीता, भगवत गीता की पोथी थी, वह भी गौरीदास पंडित को दी और फिर उसके घर में गए, एक दो दिन वहां पर रहे। बाद में जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां से चलने के लिए तैयार हुए तो गौरीदास पंडित हाथ जोड़कर कहते कि प्रभु, आप कैसे जा सकते हैं, कितने इंतजार के बाद और अपनी इच्छा से स्वयं कृपा करके आए हैं, तो अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महाप्रभु को जाना है लेकिन अपने भक्तों के वश में है, गौरीदास के प्रेम को देखकर वहां से जा नहीं पा रहे। तो थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए, बाद में महाप्रभु ने वहां पे नीम के वृक्ष से, नीम के लकड़े से दो विग्रह तैयार किए, एक अपना और एक नित्यानंद प्रभु का, और कहा कि गौरीदास ये आप रखिए इन दोनों विग्रहों को, ये साक्षात हमारा ही स्वरूप है, मेरा और नित्यानंद का ही स्वरूप है, आप इसको रखिए और इसकी सेवा पूजा कीजिए। लेकिन गौरीदास पंडित तो मानने वाले थे नहीं, ऐसे आप मुझे नहीं समझा सकते, अरे गौरीदास ये मेरा ही स्वरूप है और अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो लाओ भोग, तुम्हारा लगाया हुआ भोग हम चारों ग्रहण करेंगे, दो विग्रह और दो हम दोनों। तो चारों बैठ गए और गौरीदास पंडित ने चारों के सामने भोग रखा, थाली रखी और उसके देखते देखते चारों, दो विग्रह और दो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, चारों भोग ग्रहण करने लगे और बाद में भोग ग्रहण करके चलने लगे, उठकर चारों जाने लगे। तो गौरीदास पंडित, अरे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप चारों क्यों जा रहे हैं? ठीक है गौरीदास, आप इन चार में से जिस दो को पकड़ लेंगे, उस जिसका हाथ पकड़ लेंगे वो आप रख लीजिए, बाकी के दो यहाँ से जाएंगे। और तब गौरीदास पंडित ने एक गौर और एक निताय का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर अपने घर में लाकर सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। एक गौर निताय वहां से गंगा जी की ओर गंगा तट पर चलने लगे। अपने द्वार पर खड़े हैं और देख रहे हैं, एक साइड घर में बैठकर गौर निताय सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, और उधर दृष्टि करते हैं तो गौर निताय गंगा के तट पर जा रहे हैं। दोनों साइड वही दृश्य, एकदम प्रेम में आनंद विभोर हो गए। और फिर तो घर में ही नित्य भावपूर्वक सेवा करते थे और नित्य जब भोग लगाते थे तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साक्षात विग्रह से प्रकट होकर उसका गौरीदास पंडित का अर्पण किया हुआ भोग ग्रहण करते थे। और एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि आज मैं गौर निताय का बहुत ही सुंदर सुवर्ण के अलंकारों आभूषणों से श्रृंगार करूंगा। मन में ऐसी इच्छा हुई और जैसी सुबह में जगकर अपने घर में मंदिर में गए तो क्या देखते कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों अनेक प्रकार के सुवर्ण के आभूषण शरीर पर धारण करके मुस्कुरा रहे हैं। उसकी इच्छा थी तो ऐसे ही भगवान ने बिना प्रयास के पूर्ण कर दी। और गौरीदास पंडित अपने हाथों से नित्य अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर दोनों को गौर निताय को भोग अर्पण करते थे। तो एक बार कई प्रकार के व्यंजन अन्न इत्यादि बनाया और आज क्या हुआ कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भोग ग्रहण नहीं कर रहे। गौरीदास पंडित ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं भोग ले रहे हैं। तो फिर अंत में थोड़ा क्रोधित हो गए और मान कर गए कि नहीं खाना है तो क्यों मुझे इतना परेशान करते हो, आपको जब नहीं खाना था तो मुझे इतना परिश्रम क्यों करवाया। और तब महाप्रभु कहते हैं कि गौरीदास आप क्यों हर रोज इतना प्रयास करते हो, आपका कष्ट देखकर हम लोगों को बहुत दुख होता है, इसलिए आप इतना सारा व्यंजन मत बनाइए। और तब कहते हैं कि ठीक है प्रभु आपकी इच्छा है तो मैं आज कल से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आज तो आप भोग ग्रहण कर लीजिए। तो उसके कहने से जो जो उसने किया वह किया। और तो और मैंने भक्तों के मुख से सुना है कि जो मूल गौर निताय थे वह वहीं पर गौरीदास पंडित के घर में ही रह गए और जो विग्रह रूप में थे वही वहां से बाहर गए। इससे ज्यादा भगवान की भक्त वत्सलता क्या होगी, अपने भक्तों के वश में होकर वहां पर रह गए। तो बस यही प्रसंग कह रहे सुखदेव जी, एवं संदर्शिता यंग हरिनाम भृत्य वश्यताम। इस प्रसंग से मात्र सुखदेव जी यही सुखदेव जी कहते कि भगवान यही बता रहे कि मैं कितना अपने भक्तों के वश में हूँ। हरिनाम संदृश्यताम भृत्य वश्यताम। और भक्ति से जैसे भगवान वश में होते हैं ऐसे अन्य किसी प्रकार से नहीं होते हैं, न तो ज्ञान से न तो योग से। और इस बात को बताने के लिए उसके बाद का श्लोक कह रहे कि नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानीनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमताम इह। इस संसार में भक्तिमताम, भक्ति से जैसे भगवान प्राप्त है ऐसे न तो ज्ञानियों को प्राप्त है न आत्मभूताम अर्थात योगियों को प्राप्त है। तो जब ज्ञानियों को और योगियों को भी प्राप्त नहीं है तो कर्मकांडियों को तो कैसे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि संसार में कई लोग ऐसे जो कहते हैं कि ज्ञान भक्ति योग और कर्म इन चारों का फल एक ही है, क्योंकि चारों का वर्णन एक ही शास्त्र में हुआ है इसलिए चारों का फल भी एक ही है। एक शास्त्र में वर्णन हुआ है तो उसका अर्थ है उसका फल भी एक है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो एक ही गाय से दूध भी मिलता है और एक ही गाय से गोबर भी निकलता है, तो क्या दोनों को समान समझेंगे? जिस भाव से दूध को पिएंगे उसी भाव से गोबर को भी खा सकते हैं। एक गाय से निकलने वाली वस्तु समान होती तब तो दोनों समान होने चाहिए ना, और एक ही पिता के दो पुत्र भी समान नहीं हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अद्वैत आचार्य के पुत्र थे अच्युतानंद, जो महाप्रभु के एकनिष्ठ और अनन्य प्रेमी थे, और जो उसके पुत्र थे उसको महाप्रभु की बातों से उसका मेल नहीं हो रहा था, तो कहते क्या उसको समान समझेंगे? भले ही एक ही पिता के पुत्र है लेकिन क्या उसको समान ऐसा समझा जाएगा? नहीं। और कहते कि एक ही गुरु के शिष्य होने पर भी समान नहीं हो सकते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरी जी के ही शिष्य थे ईश्वरपुरी, जिसकी गुरु भक्ति, जिसका प्रेम देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए और ईश्वरपुरी को अपने गुरु रूप में वरण किया, और उसी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे रामचंद्र पुरी, जो महाप्रभु में दोष दिखते थे। तो क्या एक ही गुरु के शिष्य होने के नाते माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी को समान माना जाएगा? नहीं। तो ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद कहते हैं कि भले ही एक ही शास्त्र में इन सभी बातों का वर्णन है लेकिन सबका फल अलग अलग है, सब समान नहीं है। कर्म का फल है बंधन, और ज्ञान और योग का फल है आत्महत्या। थोड़ी ऊंची बात है पचाने में, लेकिन महाराज जी कह रहे भक्ति सिद्धांत महाराज के, ज्ञान और योग का फल है आत्महत्या और भक्ति का फल है संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति। बस यही बताने के लिए इस प्रसंग को यहाँ पे सुखदेव जी ने उद्धृत किया है, और यही भक्ति की महत्ता को बताने के लिए ही भगवान वेदव्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत पुराण प्रकट किया है। भागवत का लिखने का और कोई प्रयोजन नहीं है, एक ही प्रयोजन है कि बस ऐसे जीव करके संसार के जीव इसको सुनकर कृष्ण की भक्ति में लग जाए। भागवत लिखने के बाद खुद व्यास जी कह रहे हैं यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। यस्याम वे, इसको सुनने से, वे का अर्थ है निश्चित, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, संसार के जीवों को भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और जो भक्ति कैसी है, शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय को नष्ट कर देने वाली है। ऐसी भक्ति की महत्ता बताने वाली भगवान की दामोदर लीला जो अंत में पूर्ण करके सुखदेव जी कहते हैं कि जब कृष्ण को बांध दिया माता यशोदा ने उखल के साथ, और फिर वह अपना देह कार्य में लग गई, तब कृष्ण ने देखा अद्राक्षित अर्जुनों पूर्व गुह्य को धनद आत्मजो। कृष्ण की दृष्टि गई कि उसके आंगन में जो अर्जुन के वृक्ष थे, दो अर्जुन वृक्ष यमल, उसके ऊपर दृष्टि गई और सोचा कि ये कौन है, ये पूर्व में गुह्य अर्थात यक्ष थे, धनद आत्मजो कैलाश के कोषाध्यक्ष कुबेर जी और उसके पुत्र थे, तो क्यों ये वृक्ष बने? तब कहते पूरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो, पूर्व में नारद जी के शाप के कारण यह दोनों वृक्ष का शरीर प्राप्त किए हैं। और ये कौन थे? तब कहते कि नलकुबर मणिग्रीव इति ख्यातो, ये नलकुबर और मणिग्रीव नाम के यक्षराज कुबेर जी के पुत्र थे, और मदात धन के कोषाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र होने के कारण उसमें मद था, और श्रियान्वित धन संपत्ति के मद के कारण नारद जी ने उसको शाप दिया, और वही नलकुबर और मणिग्रीव ये अर्जुन वृक्ष बने हैं। तो वहां पर नवम अध्याय पूर्ण करके अब दसम अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज सुनने में इतने सावधान है कि जहाँ कहीं पर भी थोड़ी सी भी शंका होगी तो तुरंत ही प्रश्न करते हैं। और भागवत में कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे परीक्षित महाराज ने जानबूझकर जानते हुए भी प्रश्न किए हैं। प्रायः तो न जानने के कारण सुनने की जिज्ञासा से प्रश्न, जानने की जिज्ञासा से प्रश्न किया है, लेकिन कई जगह पर जानते हुए भी प्रश्न किया है। जैसे सुखदेव जी मन्वंतरों का वर्णन, मन्वंतरों की कथा सुना रहे थे, तो उसमें कहते कि चतुर्थ मन्वंतर में, तामस मन्वंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया और गजेंद्र को ग्राह की पकड़ से मुक्त कराए। तो इतना कहकर वो गजेंद्र मोक्ष की लीला सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में सुना दी। तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि बादरायण एतत्ते श्रोतुम इच्छा महे वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम मुमुचतः। हे बादरायण, हम लोग एतत्ते श्रोतुम इच्छा महे, हमको यह सुनने की इच्छा है कि हरिर यथा गजपतिम, भगवान श्री हरि ने गजपति अर्थात उस गजेंद्र को कैसे ग्राह की पकड़ से मुक्त कराया। तो वहां पे प्रश्न करते हैं कि बादरायण एतत्ते श्रोतुम इच्छा महे, हे बादरायण हम आपसे सुनना चाहते। तो वहां पे कहने वाला सुखदेव जी किसी और कोई था क्या? उस प्रश्न से तो ऐसा लगता है कि वहां पे 8-10 वक्ता होंगे और उसमें से परीक्षित जी कहते कि हे बादरायण हम आपसे सुनना चाहते हैं। बादरायण एतत्ते श्रोतुम इच्छा महे, आपसे सुनना चाहते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है कि परीक्षित महाराज कहते कि हे गुरुदेव, हमने यह प्रसंग पहले भी सुना है कि भगवान कृष्ण ने कैसे उस ग्राह की पकड़ से गज को मुक्त कराया, लेकिन हे गुरुदेव अब हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि भगवान ने कैसे उस ग्राह को मुक्त, गज को मुक्त कराया। एतत्ते श्रोतुम इच्छा महे, लेकिन यहाँ पर तो जिज्ञासा कर रहे परीक्षित महाराज के, ठीक है कई ऐसी घटनाएं हुई कि भाई किसी को गर्व में मद में आने के कारण ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं और वृक्ष बन जाते हैं, पशु पक्षी बन जाते, कुछ भी बन जाते, लेकिन नारद जी ने श्राप दिया, नारद जी में क्रोध आ गया। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न यह था कि नारद जी को क्रोध आ गया तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण परम शांत सत्वगुणी देवर्षि नारद जी को क्रोध आ गया? कहते हैं कि कच्छताम भगवन एतत् तयो शापस्य कारण। हे भगवन, उन दोनों के शाप का कारण बताइए। यत्तद् विगर्हितम् कर्म येन वा देवर्षिस्तम, उसने ऐसा तो कौन सा बड़ा पाप अपराध विगर्हित कर्म कर दिया था जिसके कारण देवर्षि तम नारद जी को क्रोध आ गया? तब कहते आज के श्लोक में सुखदेव जी उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच, रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो। रुद्रस्य अनुचर, एक तो शिव जी के अनुचर सेवक थे और दूसरा धनदात्मज, धनवान धन संपत्ति के देव कैलाश के कोषाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र थे। तो दोनों चीज आर्थिक संपन्नता थी और शक्ति बल की दृष्टि से भी संपन्न थी। शिव जी के अनुचर थे इसलिए उसका कोई सामना करने वाला था नहीं, उससे कौन झगड़ा लड़ाई करेगा। तो दोनों होने के कारण उन लोगों सुदृप्त इतने अहंकार घमंडी हो गए थे कि कैलाश पर्वत के सुंदर उपवन में जहाँ पे मंदाकिनी जो गंगा जी की एक धारा है, मंदाकिनी बह रही है और उस गंगा जी के तट पर एक सुंदर उपवन बगीचा है और उस बगीचे में वारुणी मदिराम पीतवा, वारुणी नाम की मदिरा को पीकर उस दोनों के नेत्र मद से एकदम चूर हो गए थे, मदा धुर्णित लोचन, और उनके साथ अनेक स्त्रियां थी जिसके साथ गा रहे थे, जैसे फिल्म में गाते रहते स्त्रियां ऐसे वो दोनों गा रहे थे। और पुष्पित एवं उस पुष्पों से लदे हुए बाग में बगीचे में मंदाकिनी के तट पर कैलाश के उपवन में स्त्रियों के साथ मदिरा वारुणी नाम की मदिरा पीकर दोनों नलकुबर और मणिदेव नाच रहे थे और गाना गा रहे थे। तो इसकी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवताओं के भक्तों को ऐसी सुविधा मिलती है, जिसको ऐसी सुविधा चाहिए, स्त्रियां, व्यसन, शराब, संसार की कामना जिसके मन में, वह कभी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, वो देवताओं की शरण लेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते कि कामेस्तेते यत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं के कारण जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वह प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाए। यद्यपि भगवान स्पष्ट रूप से कहते कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, यह संसार की माया जो इतनी प्रबल है कि जिसको कोई पार नहीं कर सकता है, क्यों, मेरी है और दुरत्य है, जिसके कारण यह जीव जन्म मृत्यु रूपी चक्र में फंसा हुआ अनेक अनेक प्रकार का दुख भोग रहा है, यहाँ पे बारंबार जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहा है, क्यों, माया के कारण। और जब तक यह माया से मुक्त नहीं होगा तब तक उसको यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, उसका संसार का आवागमन छूटेगा नहीं, और इस माया को तरना बिल्कुल दुर्भाग्य है। एक ही उपाय है, क्या, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा वह इस संसार की माया से आसानी से मुक्त हो जाएगा। तो इतना स्पष्ट कह रहे भगवान, फिर भी संसार की कामनाओं के कारण जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भगवान को पूछा जाए कि आप इतना स्पष्ट कह रहे हैं, तब तो संसार में जितने भी लोग हैं वह सब आपकी शरण में आ जाने चाहिए ना। कहते कि मात्र शरण में आने से माया से मुक्त हुआ जा सकता है, तो सब लोग क्यों आपकी शरण में नहीं आते। तो भगवान कहते कामेस्तेते यत ज्ञान, कामनाओं के कारण जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है वह मेरी शरण में नहीं आएंगे, वो तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाएंगे, देवताओं का भजन करेंगे। और विशेष बात, प्रभुपाद जी लिख रहे कि आज संसार में देख रहे हैं कि वैष्णवों की जगह देवताओं के भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्या कारण है, आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णवों से अधिक क्यों है, इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि वैष्णव न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी अधम मनोरंजनों में रुचि लेते हैं, और न ही उसको ऐसी परमिशन कृष्ण के द्वारा है और न ही भक्तों के द्वारा है। अब वैष्णव लोग, भगवान तो नहीं परमिशन देते, लेकिन उसके भक्त भी ऐसी परमिशन नहीं देते कि कोई मदिरा पिए, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करे, मांसाहार करे, इन सब की बात तो दूर रही, लेकिन कान का लहसुन खाने की भी छूट नहीं देते, और इससे भी ज्यादा कि चाय भी नहीं पीने देते हैं। वैष्णव इतनी भी परमिशन नहीं देते कि आप चाय पी सकते हैं, और देवताओं के भक्तों को सभी प्रकार की छूट देखा जाता है उन लोगों के में कि भांग, धतूरा, शराब, मांस, बलि इत्यादि देकर। उज्जैन में आप लोग गए हो तो मालूम होगा कि वहां पे महाकाल का मंदिर है, काल भैरव, काल भैरव, महाकाल तो ज्योतिर्लिंग है, तो काल भैरव शिव जी के जो एकादश रुद्र है उसमें से एक है, और उस काल भैरव को वहां पे भोग में दारू, शराब पिलाया जाता है। मैंने तो देखा है, आप सुना नहीं है, देखा है कि प्रसाद के भोग के रूप में उसको दारू पिलाया जाता है, और फिर वहां पे जो भक्त लोग होते हैं उस काल भैरव के, वह सब प्रसाद के रूप में उसको पीते हैं दारू को। अब देखिए, यहाँ पर और कहीं स्थान पर अगर किसी व्यक्ति का शराब का व्यसन है, फिर भी वह छुपके से पिएगा, खुले में नहीं पिएगा, क्योंकि जानता है कि खुले में पीने से बदनामी होगी, लोग क्या बात करेंगे, इसलिए शराब का व्यसनी भी अपने घर में जाकर या तो कहीं पर बार इत्यादि में जाकर शराब पी लेंगे चुपके से, लेकिन बीच रास्ते में खुले में नहीं पी सकते, संकोच होता है, लेकिन वहां पर कोई संकोच नहीं है, प्रसाद के नाम से खुले में पी रहे हैं और अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम तो महाकाल का, काल भैरव का प्रसाद ले रहे हैं। और कई बात आप यहाँ पे मंदिर है जीवदानी विरार में, तो वहाँ पे जाएंगे तो बकरे की बलि देकर लोग घर पे ले जाकर खाते हैं प्रसाद के रूप में। हमारे शुक्रवार के सत्संग में एक भक्त आते हैं, नीचे आते हैं, तो लोग 8-10 महीने पहले नेपाल गए थे, तो भारत और नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए भारत और नेपाल की बॉर्डर पर वो लोग क्या गाड़ी इनोवा करके जा रहे थे भारत की बॉर्डर से पशुपतिनाथ। तो बीच में एक जगह पर जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने गाड़ी रोकी और कहा कि आपको दर्शन करना हो तो यहाँ पे देवी जी का एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और जो भी लोग पशुपतिनाथ का दर्शन करने आते हैं वो सब यहाँ पे जाते हैं, तो आपको जाना है तो देवी जी का नाम भी उसने मुझे बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं आया। मैंने यहाँ आते समय रास्ते में स्मरण आ गया तो फोन किया उसको, लेकिन नहीं उठाया नाम पूछने के लिए। तो वहाँ पर्वतों के बीच में है वो मंदिर, और वहाँ पे चलकर या गाड़ी से जाने का कोई रास्ता नहीं, एकमात्र रोप वे है, उसमें बैठकर ही जाया जा सकता है, और एक व्यक्ति का 400 रुपया चार्ज है, इतना लंबा अंतर है। तो उसने कहा कि भाई सब लोग जाते हैं, तो वो लोग गए वहाँ पर और एक का 400-400 देकर मन कामना मांगा। तो कहते थे कि वहां पर गए तो हम तो वहां पर रुक नहीं पाए, सब लोग अपना अपना बकरा लेकर खड़े थे और वहां पे देवी जी के सामने उसको काट कर फिर अपनी बैग में भरकर हाथ में लेकर घर पे जाकर उसका प्रसाद लेते थे। वहां पे सिस्टम ये, वहां पे जाने का अर्थ ही वहां पे कि माता जी को बकरे की बलि चढ़ाना। तो कहने का तात्पर्य कि इन सभी भक्तों में, देवताओं के भक्त में चोपा जी यहाँ पे लगते, इन सब बातों की छूट दी गई है, लेकिन वैष्णवों के ऐसी परमिशन नहीं है। और जड़ भरत जी महाराज भागवत में कहते कि यह सब जो देवताओं के भक्त है वो लोग कभी कभी ऐसे दुखद परिस्थिति में आ जाते हैं, अपने पाप के कारण, अपनी भोग वृत्ति के कारण, अपने ही स्वजनों से और संसार के लोगों की तरफ से उसकी वंचना होती है, उसका तिरस्कार होता है, और जब संसार से उसकी वंचना और तिरस्कार होता है तब वह उस दुख से परेशान होकर वैष्णव के संग में आ जाता है। लेकिन आगे बात कर रहे ताली बजाने जैसी नहीं है। तेर वंचित तो हंस कुलम समाविशत, तेर उन अपने समाज के द्वारा ही वंचित होने के कारण वह हंस कुलम समाविशत, हंसों के कुल में अर्थात परम हंसों जैसा जिसका स्वभाव है ऐसे वैष्णवों के कुल में आ जाता है, और फिर वैष्णव के संग में तो आ जाते हैं लेकिन न रोचयन सीलम, वैष्णवों का सील उसको पसंद नहीं आता है, उसका सदाचार, उसका आचरण उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे सुबह में जल्दी जगना, व्यसन नहीं कर सकते, कांदा लहसुन नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते है, सदाचार का पालन करना पड़ता है, तो यह सब जो वैष्णवों का सील है उसको पसंद नहीं आता है। तो कहते कि तेर वंचितम हंस कुलम समाविशत न रोचयन सीलम उपेति वानरान, और फिर वैष्णवों को छोड़कर उपेति वानरान वानरों के समाज में मिल जाते हैं, अर्थात वानरों जैसी जिसकी प्रवृत्ति इंद्रिय भोग की ऐसे लोगों में फिर जाकर मिल जाते हैं, वानरान उपेति, और फिर तद जाति रासन सुनिवृत्त इंद्रिय, और फिर उन्हीं इंद्रिय भोगी लोगों के साथ में रहकर इंद्रिय तृप्ति में आनंद लेने लगते हैं। तद जाति उसकी जाति के अनुसार, अर्थात इंद्रिय भोग जो करते हैं उसी के अनुसार बस उसी में लग जाते हैं, और परस्पर उद्विक्षणम विस्मृत अवधि, और बस फिर तो एक दूसरे का मुख देखने में उसको अपनी जीवन की अवधि का कुछ ख्याल नहीं रहता है कि कब मेरा जीवन समाप्त हो गया। बस ऐसे ही जीवन, इतना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ में चला जाता है। लेकिन वैष्णवों की संख्या आज इसलिए कम है, प्रभुपाद जी लगते हैं कि कलयुग के प्रभाव के कारण प्रायः लोगों की बुद्धि भोगों में और कामना में ही लगी हुई है, और कृष्ण जो अपने भक्तों की उचित कामना है उसको तो पूर्ण करते हैं, लेकिन अनुचित मांग को पूर्ण नहीं करते। आमी विज्ञ से ही मूर्ख विषय कहने थे, मैं तो जानता हूँ उसका हित कैसे होगा और किस में उसका अहित है, इसलिए जो उसका हित होगा जिसमें वही देता हूँ, और इसीलिए आज वैष्णव की संख्या कम है। तो यही कहने का तात्पर्य है। तो बाद में अब यह दोनों नारद जी ने उसको क्यों शाप दिया, यह कथा बहुत सुंदर कथा, सिद्धांत में कथा है, सुखदेव जी आगे सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम। खूब खूब धन्यवाद सभी भक्तों का, बोलने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय।